हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वो तुरंत अपने कमरे में आया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक बार फिर वही डरावने और उलझे हुए दृश्य उसके दिमाग में घूमने लगे और उसे पूरी तरह घेर लिया और वो पूरी तरह से बेचैनी से भर उठा। वहीं दूसरी ओर रायचंद विला में मीरा और आर्यन दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। दोनों का ही प्यार उनसे छिन चुका था, तो इस वक्त दोनों ही काफी ज्यादा बेचैन थे। लेकिन तभी उनके पिता धीरज वहां आए और मीरा के सिर पर हाथ रखते हुए बोले थे, बेटा हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुमने काफी कुछ सहा है और तुम सिद्धार्थ को भी चाहने लगी थी, लेकिन बेटा अब हमने एक फैसला लिया है कि हम अपने बच्चों को इस तरह दुख में नहीं देख सकते, इसीलिए हमने तुम्हें अब अब्रॉड भेजने का निर्णय लिया है। मीरा बेटा, कल ही तुम्हारी फ्लाइट है और तुम्हें कल के कल ही निकलना होगा। ये सुनकर मीरा चौंक गई और बोली थी, लेकिन डैड मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं इस तरह अब्रॉड चली जाऊं? नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आप लोगों के साथ ही रहना है। ये सुनकर उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था, मेरी बच्ची हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम हम सबसे बहुत प्यार करती हो और हमारे साथ ही रहना चाहती हो, लेकिन समझा करो, हम चाहते हैं कि तुम बाहर जाकर सिद्धार्थ की यादों से अपना पीछा छुड़ा लो, क्योंकि जब तक सिद्धार्थ की यादें तुम्हारे साथ रहेंगी तुम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगी। हम तुम्हें इस तरह टूटते हुए जीते नहीं देख सकते, इसीलिए तुम्हें जाना होगा। अगर हमारे बस में होता तो हम तुम्हारे भाई आर्यन को भी तुम्हारे साथ भेज देते, लेकिन इस वक्त आर्यन ने कंपनी की पूरी बागडोर अपने हाथों में संभाली हुई है और तुम भी देख सकती हो कि हमारी तबीयत भी अब पहले जैसी ठीक नहीं रहती। ये सुनकर मीरा की आंखें भर आईं, उसने अपने पिता को कसकर गले लगा लिया। फिर वो भर्राए गले से मन में बोली थी, झलक तुमने बहुत बड़ी गलती की है, आज तुम्हारी वजह से मुझे अपने परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। याद रखना झलक, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। ये कहते हुए मीरा का गला रुंध गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं आर्यन का भी दिल बहुत ज्यादा रो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह उसकी बहन उसे छोड़कर अब्रॉड चली जाएगी। अब तो वे दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। उसका दिल भी अजीब सी टूटन से भर गया था, लेकिन वो जानता था कि उसकी बहन के लिए ये फैसला सही है और उसे इस शहर से दूर चले जाना ही चाहिए, क्योंकि जब वो यहां से चली जाएगी तो कम से कम अपनी जिंदगी के कुछ पल तो सुकून से जी पाएगी। ये सब सोचकर वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वहीं दूसरी ओर रात बीत चुकी थी और अगली सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही दादी ने तुरंत सिद्धार्थ के कमरे का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ और झलक गहरी नींद में सोए हुए थे। झलक कब की सिद्धार्थ द्वारा बनाई गई सारी दीवारों को तोड़ चुकी थी और उसके बाहों में खुद को समेटे गहरी नींद में सो रही थी। हॉस्पिटल में जब झलक घायल हुई थी तब वो सिद्धार्थ के साथ ही सोया करती थी, और खासकर जब से झलक बीमार हुई थी और उस पर हमला हुआ था तब से कई दिनों तक सिद्धार्थ उसके साथ रहा था, उसका ख्याल रखा था। उसी दौरान झलक को उसके करीब सोने की आदत हो चुकी थी। वो चाहे कहीं भी सो जाए अनजाने में खुद बखुद सिद्धार्थ के कंधों पर सिर रख देती थी, जैसे वो उसका टेडी बेयर हो। उसे इसका एहसास तक नहीं होता था, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन दोनों के बीच की सारी दूरी, सारी दीवारें कब की गिर चुकी थीं, और दोनों ही एक दूसरे को आराम से गले लगाकर कसकर सोए हुए थे। दादी के दरवाजा खटखटाने पर सिद्धार्थ और झलक दोनों की आंखें एक साथ खुल गईं। जैसे ही दोनों की नजर इस बात पर पड़ी कि वे सोते वक्त एक दूसरे के कितने करीब थे, दोनों ही तुरंत उठकर बैठ गए। सिद्धार्थ झलक को घूरते हुए देखने लगा और झलक भी लगातार उसे देखने लगी। तभी इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ कहता, झलक झट से झल्लाकर बोल पड़ी, आप क्या कर रहे थे? आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरे करीब आने की? जब हमारा कोई लेना देना ही नहीं है तो आप इस तरह मेरे करीब कैसे सो सकते हैं? हाँ, अब सिद्धार्थ और भी लाल आंखों से झलक को देखने लगा, लेकिन झलक उसे बातें सुनाकर तुरंत बेड से खड़ी हो गई और फटाफट जाकर दरवाजा खोल दिया। वो डर गई थी कि कहीं सिद्धार्थ उसे कुछ उल्टा सीधा ना सुना दे, और सुबह सुबह उसकी बकवास सुनने का उसका कोई इरादा नहीं था। अब सिद्धार्थ, जो झलक को अच्छी तरह से झाड़ पिलाना चाहता था, अचानक दरवाजा खुलने पर सामने दादी को देखकर मन ही मन महसूस कर रह गया। वो दांत भींचते हुए झलक को देखने लगा, लेकिन दादी सामने खड़ी होने की वजह से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। दादी ने आगे बढ़कर झलक के सिर पर हाथ फेरा और उसके हाथों में कपड़े देते हुए बोली, बेटा तुम फटाफट तैयार हो जाओ, और हाँ बेटा तुम्हें याद है ना, दोपहर तक तुम्हें कुछ भी नहीं खाना है, इसीलिए थोड़ा संभल कर रहना होगा। बिल्कुल पूजा के बाद ही कुछ खाओगी, तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग पूजा के लिए निकलेंगे। ये सुनकर मीरा का दिमाग चकरा गया। उसे तो याद ही नहीं रहा था कि दादी ने उसे पूरी तरह से व्रत रखने के लिए कहा था, जहां उसे कुछ भी नहीं खाना पीना था, और बिना खाए पिए तो झलक का दिमाग वैसे भी नहीं चलता था, लेकिन दादी की खुशी के लिए उसने चुपचाप कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। वहीं सिद्धार्थ ने एक बार फिर आंखें दिखाते हुए दादी से कहा, एक बार फिर से सोच लीजिए, आप जो ये करवा रही हैं बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन दादी ने तुरंत कड़े शब्दों में सिद्धार्थ को डांट दिया, उसके हाथों में कपड़े थमा दिए और कहा, जो दिया है वही पहनना है। इतना कहकर वो बाहर चली गई और साथ ही ये भी कह दिया कि ठीक 20 मिनट के अंदर अंदर दोनों को बाहर मिलना है। उधर झलक बाथरूम में तो दादी के लिए कपड़े लेकर चली गई थी, लेकिन उसे साड़ी पहनना आता ही नहीं था। पहली बार रणविजय के आने पर दादी ने उसे साड़ी पहनाई थी, लेकिन अब दादी तो जा चुकी थी। झलक साड़ी के साथ जूझने लगी और काफी देर तक बाथरूम में ही खड़ी रही। इधर सिद्धार्थ बार बार घड़ी देखते हुए झलक के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। दादी ने बहुत कम टाइम दिया था और झलक अभी तक बाहर नहीं आई थी। आखिरकार गुस्से में आकर उसने बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। अंदर से झलक चिढ़ते हुए बोली, देखो मुझे भी कोई शौक नहीं है बाथरूम के अंदर ही घर बसाने का, मुझसे ये साड़ी पहनी ही नहीं जा रही है और तुम हो कि बार बार दरवाजा खटखटा रहे हो। ये सुनकर सिद्धार्थ गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, फालतू की बकवास बंद करो और अभी इसी वक्त बाहर निकलो, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। ये सुनकर झलक को बहुत गुस्सा आया। वो मन ही मन सोचने लगी, मुझे जंगली कहता है जबकि खुद का बर्ताव पूरे जंगल जैसा है। लेकिन फिलहाल कुछ सोचकर उसने दरवाजा खोल दिया। झलक ब्लाउज और साड़ी के आधे अधूरे हाल में खड़ी थी। जैसे ही सिद्धार्थ, जो गुस्से से भरा हुआ था, उसे ऐसे देखता है, वो अंदर जाने ही वाला था ताकि झलक को अच्छा खासा सबक सिखा सके। और जैसे ही उसकी नजर पेटीकोट और ब्लाउज पहने हुए झलक पर गई, वो अचानक अपनी जगह पर थमसा गया। झलक की नाभि के नीचे एक काला तिल साफ दिखाई दे रहा था। झलक के इस तरह के सुगठित, व्यवस्थित और सुडौल शरीर को देखकर सिद्धार्थ का संयम बुरी तरह से डगमगा गया था और वो मन ही मन बोला था, पहले कितनी बदसूरत दिखा करती थी लेकिन अब कितनी खतरनाक दिखाई देती है, और शादी के बाद खूबसूरती के चक्कर में इसने इतने सारे लोगों को फंसा रखा है। लेकिन फिलहाल अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए सिद्धार्थ ने उसे घूरते हुए बोला था, क्या कर रही थी तुम इतनी देर से?
तब झलक इरिटेट होते हुए उसके हाथों में साड़ी देकर बोलती है, साड़ी पहन रही थी, अगर तुम्हें जल्दी है तो मुझे साड़ी पहना दो, नहीं तो मैं इसी तरह से बाहर चली जाऊंगी। क्या करेगा सिद्धार्थ झलक की बात सुनकर? आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए दोस्तों और पढ़ते रहिए स्टोरी मेनिया।